नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी बेंगलुरू के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें बेंगलुरू से बेलगावी, अमृतसर से श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। प्रधानमंत्री बाद में बेंगलुरू मेट्रो की येलो लाइन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी आरवी रोड रागीगुड्डा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। वे बेंगलुरू में शहरी संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान श्री मोदी 15,610 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बेंगलुरू मेट्रो के तीसरे चरण की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक मुकुल चंद्र माथुर ने कहा कि हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगी, यात्रा के समय को कम करेगी और यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगी।
वंदे भारत है, ये हमारा फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहेगा इंटरसिटी ट्रैवल के लिए। जो आम आदमी को दृष्टि में रखते हुए अमृत भारत ट्रेन है, उसकी भी लॉन्च हो रही है। हम लोग वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोडक्ट हो जाएंगे और 2030 तक लगभग जो वंदे भारत के प्रोडक्शन है उसमें काफी इजाफा होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये इस क्षेत्र को राष्ट्रीय मालगाड़ी नेटवर्क से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वाणिज्य और संपर्क के लिए ये एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि विकास से प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने अपनी पोस्ट में कहा था कि कल पहली मालगाड़ी पंजाब से कश्मीर घाटी के अनंतनाग पहुंची। उन्होंने कहा कि रेल नेटवर्क द्वारा ढुलाई से कश्मीर घाटी में रहने वाले लोगों के लिए वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। राज्य सरकार ने आपदा से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए 5,00,000 रुपए की तत्काल सहायता देने की घोषणा की है।
हर्षिल क्षेत्र में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करने का अभियान जारी है। प्रभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों से आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, साथ ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़क सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर से कार्य किया जा रहा है। वहीं सेना के जवान लिमचा गाड़ में बेली ब्रिज बनाने के काम में भी युद्ध स्तर पर जुटे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। ये दल 2019 से 6 वर्षों तक एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त पूरी करने में विफल रहे हैं। इन दलों के कार्यालयों का भी कहीं पता नहीं लगाया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज और पर्यवेक्षण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 के तहत गठित समिति के संचालन को निलंबित करते हुए इस समिति का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाला मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास भेज दिया। हाई कोर्ट द्वारा मामले का निर्णय होने तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति मंदिर का कार्यभार संभालेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने अध्यादेश को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। भारतीय महिला टीम ने बिहार के राजगीर में खेली जा रही एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन और जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अपने पहले मैच में कजाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय लड़कियों ने दूसरे मुकाबले में यूएई की टीम को करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।